फिल्म शक्ति 1982 में रिलीज हुई कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में फिल्म जगत के कुछ बेहतरीन सितारों ने एक साथ काम किया था। संगीत दिया था आर डी वर्मन साहब ने। मुशी रियाज के इस फिल्म को 1982 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। दिलीप कुमार साहब को फिल्म शक्ति के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फिल्म फेयर की ओर से, और पी हरिकृष्णन को भी बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का अवार्ड मिला था।
फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। रवि स्टेशन पर उतरते ही अपने दादाजी से मिलता है। वो अपने दादाजी अश्विनी कुमार की ही तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और इसीलिए वो इम्तिहान देने की जिद करता है। उसे उसके दादाजी समझाते हैं कि सच्चाई की राह पर चलना बहुत ही कठिन है। रवि दादाजी से पूछता है कि क्या उन्हें भी कभी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तब जाके दादाजी अपनी और अपने बेटे विजय की जीवन की पूरी कहानी रवि को सुनाते हैं।
यहाँ से शुरू होती है उनकी कहानी, और वो बताते हैं कि अपने बेटे के पैदा होने पर वो और उनकी धर्मपत्नी शीतल कितने खुश हुए थे।
अरे ये तो बहुत ही छोटा है।
एक दिन का तो है।
अरे पर ये तो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता।
ऐसा ही होता है, दो चार दिन के बाद शक्ल साफ दिखाई देगी।
अच्छा 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 अच्छा, तुम घर कब आओगी? क्या कहते हैं ये वहाँ ठीक ठाक कराना है, साफ सफाई करानी है।
साफ सफाई तो बाद में होगी, पहले इसके लिए कुछ सामान लाना है, मैं लिस्ट देती हूँ।
नहीं, वो सब मैं जानता हूँ ना।
अरे आप क्या जानते हैं?
भाई दूध की शीशियां लानी है, छोटे बड़े नैपकिन तौलिए हर साइज के वो लाने हैं, फिर एक झुनझुना लाना है, वो क्या होता है वो उसमें वो गाड़ी जिसमें बच्चे को घुमाने ले जाते हैं,
प्रेम
प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम।
मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल।
विजय के पिता को किसी स्मगलिंग के गैंग का पता लगता है और उस गैंग का एजेंट यशवंत को गिरफ्तार करने को कहा जाता है। जब वो यशवंत के घर पहुंचते हैं तो उन पर यशवंत के आदमी हमला करते हैं। उन सभी गुंडों की अच्छी तरह से पिटाई कर आखिर यशवंत को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जेके और केडी दोनों मिलकर यशवंत को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर अश्विनी के बेटे को किडनैप कर लिया जाए तो अश्विनी खुद ही अपने आप यशवंत को छोड़ देगा। जेके विजय को किडनैप कर लेता है और अश्विनी को फोन करता है और अपनी शर्त रखता है कि वो तभी विजय को छोड़ेगा जब उसे यशवंत मिलेगा।
आलू क्यों नहीं खा सकते हैं?
मुझे तो फौरन कह देते हैं, अपने आप को देखा है कितने मोटे हो रहे हैं।
मोटे हो रहे हैं तो क्या, भूखो मत जा, ये तो आलू का पराठा है, बहुत उम्दा
है, हाथ जल जाएगा,
गरम है गरम।
क्या मुसीबत है?
ओ
ये लो, यो फोन आया।
जाते जाते हैं, जाते
सर।
कमिंग कमिंग कमिंग,
मैं चाय लेके आती हूँ।
हेलो, हाँ मैं अश्विनी बोल रहा हूँ, आप कौन?
मैं कौन हूँ ये छोड़िए मिस्टर अश्विनी कुमार, आप सिर्फ ये सुनिए कि आपका इकलौता बेटा इस वक्त मेरे पास है। जी हाँ, और ये बताइए अपने बेटे को जिंदा देखने का आपको कितना शौक है।
बदतमीज आदमी, क्या बकवास कर रहे हो तुम?
यही कि आपका बेटा विजय मेरे कब्जे में है, लेकिन उसकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप चाहें तो आज रात यशवंत को अपनी हवालात से निकल भागने का मौका देकर अपने बेटे की जान बचा सकते हैं।
क्या सबूत है कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है?
सबूत और गवाही तो मैं आपके बेटे से ही दिलवा दूंगा। पहले अच्छी तरह ये सोच लीजिए कि आपको मेरी शर्त मंजूर है कि नहीं, और अगर मंजूर है तो यशवंत के हवालात से फरार होने का आप क्या इंतजाम करेंगे? सोचने के लिए आपके पास एक घंटा है। ठीक, एक घंटे के बाद मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। और हाँ, लीजिए अपने बेटे से बात कीजिए। बोलो।
हेलो हेलो डैडी।
हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं डैडी बोल रहा हूँ।
डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो।
घबराओ मत बेटे, मैं हूँ ना, मैं हूँ। डैडी कुछ नहीं होने देंगे अपने विजय को, तुम घबराओ मत।
नहीं डैडी, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो डैडी, मुझे बचा लो डैडी।
हेलो हेलो विजय, हेलो।
वहाँ जेके केडी से कहता है कि वो अश्विनी की बातें रिकॉर्ड कर ले ताकि वो बाद में उसकी बातें सुन सके। केडी अश्विनी को फोन करता है तो अश्विनी उसे साफ साफ बता देता है कि वो यशवंत को नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने बेटे की जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
जेके ये टेप सुनने के बाद अपने नौकर से कहता है कि वो विजय को अपने पास ले आए। जैसे ही वो नौकर विजय को लाता है, विजय जोर से उसके हाथ में दांत से काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त केडी उसे देख लेता है पर किसी से नहीं कहता और विजय की मदद भी करता है। विजय के वहाँ से निकलते ही पुलिस पहुँचती है और उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है।
विजय घर पहुँच जाता है पर उसके दिमाग में वही बात घूमती रहती है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते और इसीलिए अपने फर्ज के आगे उसकी जान तक की परवाह नहीं की।
उसका खून
मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा।
विजय बड़ा हो जाता है पर फिर भी ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते।
विजय एक लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था, उसी ट्रेन में एक लड़की को अकेली पाकर कुछ लोफर उसे छेड़ने लगते हैं। विजय उन सभी की बहुत पिटाई करता है और उस लड़की को घर छोड़ने के लिए जाता है। बातों ही बातों में लड़की उसे बताती है कि वो किसी होटल में गाना गाती है और उसका नाम रोमा है।
आप करते क्या हैं? मेरा मतलब है काम क्या करते हैं?
देखिए, हमारे देश में काम ढूंढना भी एक काम है। आजकल मैं यही कर रहा हूँ।
यह है मेरा घर।
हाँ।
मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ।
फिर कभी।
ठीक है। मकान तो आपने देख ही लिया, दुकान के बारे में भी बता दूँ। मैं होटल सम्राट में काम करती हूँ, आप कभी वहां से गुजरे तो जरूर आइए।
होटल सम्राट?
हाँ।
कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हैं?
मैं वहां गाती हूँ। आजकल इन बड़े बड़े होटलों में एक नया फैशन निकला है, वेस्टर्न म्यूजिक की जगह हिंदुस्तानी संगीत यानी गजलों वजलों के प्रोग्राम्स होते हैं।
अच्छा, किसी दिन उधर से गुजरा तो आपका गाना सुनने जरूर आऊंगा।
थैंक यू। और हाँ, मेरा नाम रोमा है।
विजय,
बाय।
जेके अश्विनी से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। जेके एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है पर अश्विनी उसे कहता है कि उसे सब पता है कि जेके क्या कुछ करता है। अश्विनी अपने अंदाज में उसे वार्निंग देते हैं और जेके चला जाता है।
शीतल और अश्विनी दोनों विजय की नौकरी को लेकर चिंतित थे। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पुलिस स्टेशन से फोन आ जाता है कि विजय के खिलाफ उन लोफर लड़कों ने कंप्लेंट लिखाई है। विजय को अश्विनी कुमार पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था, तब जाके विजय उस रात का पूरा किस्सा बयां करता है।
ये सतीश राय उन्हीं चार लड़कों में से एक है जिनसे परसों लोकल ट्रेन पर तुम्हारी मारपीट हुई। लड़के को काफी चोटें आई हैं। इज्जतदार बाप का बेटा है इसलिए बाप ने तुम्हारे खिलाफ ये रिपोर्ट लिखवाई है। इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है?
सिर्फ इतना कि इज्जतदार आदमियों के बेटों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेन में सफर करने वाली लड़कियां भी इज्जतदार होती हैं।
लेकिन इस बयान में किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं है।
होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच यह है कि ये चार गुंडे एक शरीफ लड़की को परेशान कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ इसी वजह से हुआ।
लड़की का नाम पता बता सकते हो?
जी हाँ, बता सकता हूँ।
सुधाकर
जी,
बयान ले लो।
चलिए।
विजय, अगर ये सब सच है तो तुमने या उस लड़की ने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई?
वो तो चाहती थी लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा।
तुमने जरूरी नहीं समझा? वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे,
लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो।
मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं।
तुम्हें पुलिस की जरूरत है या नहीं, लेकिन पुलिस को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो किसी मौके पर भी कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। तुम कसूरवार हो या नहीं इसका पता तो खैर चल ही जाएगा, लेकिन कानून के बारे में अगर तुम इसी तरह सोचो कि जिस तरह के तुम सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल किसी मुश्किल में पड़ जाओ। ये बात याद रखना।
मैं आपकी ये बात भी याद रखूंगा।
विजय किसी होटल में इंटरव्यू देने जाता है। उसकी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, पर तभी एक आदमी वहां आता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। विजय उस आदमी को पहचानने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेके का वही साथी केडी था जिसकी मदद से उसे बचपन में भागने का मौका मिला था। विजय रोमा का गाना सुनने जाता है। रोमा विजय को देख कर खुश हो जाती है और ये गाना गाती है।
ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। हमने ये सनम को खत लिखा, हमने ये सनम को खत लिखा, खत में लिखा लिखा, खत में लिखा।
विजय रोमा को उसके घर छोड़ने जाता है और रोमा फिर से उसे कॉफी के लिए बुलाती है। वो फिर से इस बात को टाल कर चला जाता है, पर जाते जाते रोमा से कहता है कि वो काफी अच्छा गाती है।
विजय के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि केडी नारंग एक स्मगलर है और वो उसके वहाँ नौकरी ना करे, पर विजय उन्हें पलट कर जवाब देता है। ये उन्हें पसंद नहीं आता और वो उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर उसे केडी के साथ काम करना है तो उसे अपना घर छोड़ना होगा।
विजय अपना घर छोड़ देता है और रास्ते में रोमा से उसकी मुलाकात होती है। वो उसे बताती है कि वो उसके साथ रह सकता है और अपने घर लेकर जाती है।
हेलो।
हेलो, कैसी हैं आप?
बस ठीक हूँ, आप बताइए, ये सामान लेकर कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं?
आ तो रहा हूँ अपना घर छोड़कर, जा कहाँ रहा हूँ ये मालूम नहीं, शायद आप बता सकें यहाँ कहीं एक आदमी के रहने के लिए जगह मिल सकती है।
मिल सकती है।
कहाँ?
मेरे घर में। मेरा मतलब है मेरे घर में कमरा खाली है, आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तो कह रही थी कि आप अकेली रहती हैं।
हाँ वो तो रहती हूँ, क्यों मेरे घर में रहने में आपको कोई एतराज है?
नहीं इतराज तो नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे?
इस शहर में इतनी फुर्सत कहां लोगों को जो कुछ कह सके। चलो सामान रखो।
चलिए।
वो रहा मेरा कमरा और ये होगा तुम्हारा, बाकी बचा ये हॉल। बंबई के कमरे छोटे कितने ही हो लेकिन एक कमरे को हॉल जरूर कहा जाता है दिल खुश करने के लिए।
वैसे ये म्यूजिक हॉल ज्यादा लगता है।
अच्छा सुनो, तुम्हारे इस तरह चले आने से तुम्हारे घर वाले परेशान तो नहीं होंगे? नहीं तो पता चले कल अखबार में खबर छप रही है एक लड़का जिसकी उम्र करीब 24-25 साल है, कद सिर्फ 6'2", एक डार्क ब्राउन पैंट और लाइट ब्राउन शर्ट पहने हुए आखिरी बार एक अजनबी लड़की के साथ देखा गया था। जिन साहब को भी पता चले मेहरबानी करके करीब के पुलिस स्टेशन में खबर कर दे, इनाम दिया जाएगा और पुलिस मुझे भी तुम्हारे साथ पकड़ ले।
नहीं, अगर वो मुझे ढूंढना चाहेंगे तो उन्हें किसी इश्तेहार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पिताजी इस शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं।
अगले दिन विजय देखता है कि केडी पे एक आदमी गोली चला रहा है और विजय तुरंत केडी को अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है।
जेके अपने गुंडों पे काफी नाराज होता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो विजय था जिसने केडी की जान बचाई थी, वो बहुत खुश हो जाता है और विजय को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है।
केडी विजय का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, तो विजय उसे अपने बचपन की कहानी बताता है। शीतल विजय से मिलने आती है और उसका सामान बांधने लगती है। विजय घर लौटने के लिए मना कर देता है, पर वो किसी तरह उसे मना लेती है और वो घर लौटने के लिए, यानी विजय घर लौटने के लिए राजी हो जाता है।
विजय और रोमा किसी रेस्टोरेंट में बैठे बात कर रहे थे, तभी एक आदमी रोमा से बदतमीजी करता है। विजय अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उसे बहुत पीटता है।
क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? ए, तुम्हें क्या तकलीफ है?
नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है।
क्या गाती है? वाह
वाह,
अरे जाएंगे कहाँ साहब, हम तो उनका जलवा देखने आए हैं। क्या गाती हैं आप, आज तो तुम्हारा गाना सुन के ही जाएंगे।
देखिए, आज का शो खत्म हो चुका है, आप कल आइए।
अरे शो हमारे लिए फिर से शो करो, हम तुमको पैसा देगा है? कितना चाहिए तुमको? कहाँ ये पैसा है, कहाँ गया है? तुम क्या करता है, क्या है? हमारा डायरेक्ट बात चलता है, डायरेक्ट बात, तुम बीच में क्यों दलाली करता है? अब बोलो।
तेरी नखेला क्या?
और हम ज़्यादा देख कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूँगा कमीने, हट जा, हट, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, निकल जा, क्या भामे, निकल, साले, साले जान से मार डालूँगा तुझे,
सुनिए तो आप, मेरी तो सुनिए तो आप, आप वो जो आपके साथ आई हुई बेचारी बहुत घबराई हुई है, आप अंदर जाइए, हम इसको ठीक कर देंगे। चल चल चल,
अबे बाहर आने दो, साले को दिखाता हूँ मजा। बस बस बस, बहुत हो गया। वैसे ये एक्टिंग बहुत महंगी पड़ गई मुझे, बहुत भारी याद है साले। तुम तो कह रहे थे तुम फौरन आके बचा दोगे, इतनी देर कर दी।
हम चाहते थे लोग तुम्हें अच्छी तरह देख लें
और सुन लें।
चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पैसे दे दो, मैंने तो अपना काम कर दिया।
हाँ, शराबी का रोल तो तुम कर चुके, लेकिन अभी तुम्हें एक रोल और करना है।
वो क्या?
अब तुम्हें लाश का रोल करना होगा।
क्या मतलब?
जेके के दो लोग विजय को अंदर भेज देते हैं और उस शराबी को मार डालते हैं।
विजय घर लौटता है, वो अपने पिता से शायद कुछ बातें करना चाहता था, मगर उससे पहले पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि विजय के नाम का वारंट है उनके पास। विजय इस इल्जाम से बिल्कुल इनकार कर देता है। विजय पुलिस को अपना बयान देने से भी इनकार कर देता है, तो अश्विनी कुमार उसे उसका फर्ज समझाते हैं, पर वहाँ नारंग साहब आते हैं और विजय की जमानत करवाकर उसे वापस ले जाते हैं।
पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा, मुझे भूल जाना चाहिए।
सर, एक साहब मिस्टर विजय कुमार की जमानत के लिए आए हैं।
अच्छी तरह देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है जमानत के कागजात और कोर्ट से मिस्टर विजय कुमार की रिहाई के ऑर्डर्स।
सर, ये मिस्टर नारंग है।
के डी नारंग।
अच्छी तरह पहचानता हूं मैं आपको, मिस्टर के डी
नारंग,
मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स भी देख लीजिए। इसके बाद कानूनन आप मिस्टर विजय कुमार को एक मिनट के लिए भी यहां नहीं रोक सकते।
कानूनन मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये जानने के लिए मुझे मिस्टर के डी नारंग या उनके वकील की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सुधाकर।
यस सर।
गेट मिस्टर विजय हियर।
यस सर।
बैठिए।
मिस्टर विजय, आप बाहर आ सकते हैं।
हेलो विजय।
थैंक यू नारंग साहब।
विजय, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं।
और अब मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं नारंग साहब।
कम, लेट्स गो।
विजय, इसे नसीहत नहीं मशवरा समझना। अपनी जिद में आके इन लोगों के साथ किसी ऐसे रास्ते पर न निकल जाना जहां से अगर चाहोगी तो वापस ना आ सको।
मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं।
केडी विजय को बताता है कि उस गलत इल्जाम में जेके ने ही फंसवाया था उसे, और ये भी बताता है कि जेके ने केडी का एक ट्रक उठा लिया है। तब विजय ये तय कर लेता है कि जेके को वो अकेला ही सबक सिखाएगा। विजय जेके को अगवा कर लेता है और उससे उसी तरह से बर्ताव करता है जैसे जेके ने बचपन में विजय के साथ किया था। पर जैसे ही जेके के अड्डे पहुंचता है, जेके के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। विजय उन सभी को चकमा देकर भाग जाता है। विजय की माँ यहाँ पता लगाने की कोशिश करती है कि विजय कहाँ है और वो क्या करता है, तो पता लगता है कि वो और रोमा किसी शानदार मकान में रहते हैं।
विजय और रोमा कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ प्यार में डूबे दोनों ये गाना गाते हैं।
जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया।
हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
विजय को समझाने जाती है कि वो उस रास्ते को छोड़ दे, पर विजय उसे उल्टा पाठ पढ़ाने लगता है और शीतल गुस्सा होकर चली जाती है। विजय को उसके पिता मिलने के लिए बुलाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद को कानून के हवाले कर दे, पर अंत में उसे ये बताते हैं कि उसकी माँ बहुत बीमार है और इसीलिए हो सके तो वो एक बार अपनी माँ से मिलने चला जाए।
विजय अपनी माँ से मिलने जाता है पर उसे इतना कमजोर देखकर वो अपने साथ चलने की जिद करता है। शीतल कहती है कि मैं इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने पति की ईमानदारी का बोझ उठा न सकूं।
विजय खुद को बहुत कोसता है कि वो एक बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ की जरा भी मदद नहीं कर पाता। अगले दिन रोमा विजय से कहती है कि वो माँ बनने वाली है। वो दोनों शादी कर लेते हैं। रोमा को लगता है कि तब तक उन दोनों की शादी अधूरी है जब तक वो विजय के माता पिता से आशीर्वाद न ले ले।
विजय उसे जाने देता है मगर उससे कहता है कि वो उसे जाने के लिए मजबूर न करे। रोमा विजय के घर जाती है और उसके माँ बाप से मिलती है। उसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं। विजय किसी हीरे की डील करने के लिए जाता है पर वहां पुलिस आ जाती है। अश्विनी कुमार विजय का पीछा करते हैं पर अंत में विजय उनको चकमा देकर भाग जाता है। कुछ प्रेस रिपोर्टर्स अश्विनी पर गलत इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर विजय को भगा दिया।
ये बात सुनकर वो अपना आपा खो देते हैं और एक रिपोर्टर पर हाथ उठाते हैं। अगले ही दिन ये बात हर अखबार की हेडलाइंस में छपती है, इसीलिए उन्हें ये केस किसी और को सौंपने को कहा जाता है। पर अश्विनी ये वादा करते हैं कि वो किसी भी तरह विजय को दो दिन में गिरफ्तार जरूर करेंगे।
हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं।
ये सॉरी जेंटलमैन, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन आप इतना तो बता ही सकते हैं कि अगर एक डीसीपी का अपना बेटा स्मगलर्स की गैंग में हो तो पुलिस से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
मेरे पास ऐसी बेहुदा झूठी और बेबुनियाद बातों के लिए वक्त नहीं है।
क्या ये बात भी बेबुनियाद है कि आप प्रेस के सामने विजय कुमार का नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं?
बकवास है ये।
विजय के नाम वारंट निकल चुका है।
लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा? हो सकता है
क्या मतलब?
यही कैसा नहीं हो सकता कि जब आपने मिस्टर विजय कुमार का पीछा किया तब ट्रैफिक में स्कूल के बच्चों के बहाने आपने उन्हें जानबूझ कर निकल जाने दिया।
तमीज आदमी, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो?
ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, और ये भी देखो। देखो क्या लिखा है तुम्हारे बारे में और सारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। पढ़ो।
सर, आप जानते हैं कि इन अखबार वालों ने जो मुझ पर शक जाहिर किया है उसकी असली वजह क्या है?
ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन वो लोग नहीं जानते जिनके सामने मुझे जवाब देना पड़ता है। मुझे इसी बात का डर था, इसलिए केस में तुम्हें देना नहीं चाहता था। खैर, जो हो गया हो गया। ये केस तुम अधिकारी के हवाले कर दो।
इसका मतलब है सर, आप भी यही समझते हैं इन लोगों की तरह कि मैंने विजय को जानबूझकर निकल जाने दिया?
इस वक्त सिर्फ इतना समझता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन के लिए बेहतर यह है कि यह केस तुम्हारे हाथों से ले लिया जाए। सारे कागजात तुम अधिकारी को दे दो।
और सारी जिंदगी इस एहसास के साथ जिंदा रहूं कि मैं अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहा?
मुझे अफसोस है अश्विनी, इन हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं कर सकता हूं सर, ये मेरा इस्तीफा है सर।
अश्विनी, तुम इस्तीफा दे रहे हो?
यस सर, मैं अपनी बरसों की नौकरी, अपनी नेकनामी, अपना करियर दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं सर। इसके बदले में मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, सिर्फ 48 घंटे। मैं वादा करता हूं इन 48 घंटों के अंदर जिस तरह भी होगा, जैसे भी होगा, मैं विजय को लाकर कानून के कटहरे के पीछे खड़ा कर दूंगा।
विजय को पकड़ने के लिए पुलिस उन सभी जगहों पर रेड करती है जहां गैर कानूनी धंधे होते हैं। विजय के घर को भी पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, पर एक पल ऐसा होता है कि विजय और उसके पिता आमने सामने होते हैं, पर विजय अपने पिता पर गोली नहीं चला सकता और खुद को गिरफ्तार करवा लेता है।
शीतल विजय से मिलने के लिए अश्विनी कुमार के साथ कहीं जा ही रही थी कि जेके अश्विनी पे गोली चलाता है, पर शीतल बीच में आ जाती है, वो मर जाती है। विजय को बुलवाया जाता है। उसके अपनी माँ को आखिरी बार देखने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पर वो बीच रास्ते से ही भाग जाता है और सीधे जेके के अड्डे पे जा पहुँचता है।
जेके के गुंडों से उसकी काफी लड़ाई होती है। विजय को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश करती है। विजय जेके का पीछा करते करते एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है और वहाँ वो जाकर उसका कत्ल कर देता है। उसे पुलिस भागते हुए देख लेती है और अश्विनी कुमार विजय का पीछा करते हैं। कोई उपाय न पाकर मजबूरन वो विजय पर गोली चला देते हैं।
विजय मरते वक्त अपने पिता से कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उनके पिता भी इस बात पर यकीन करते हैं।
और विजय की मौत हो जाती है। अश्विनी को ये गाना याद आता है।
विजय,
नहीं
विजय,
नहीं विजय, कोई सलाह नहीं चाहिए। अकेला जी सकता हूं तो अकेला मर भी सकता हूं।
ऐसे न कहो।
मेरी माँ को मार दिया उसने। क्या वही आदमी है जिसने मेरी मेरी माँ
क्या हो गया? ये सब क्यों हुआ?
ये तो होना ही था। एक ना एक दिन ये तो होना ही था, लेकिन अब सब खत्म हो गया।
ना,
बहुत कोशिश की कि अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकाल दूं, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहा, चाहा कि ना करूं, लेकिन ऐसा क्यों ऐसा?
इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता
हूं। तो कहा क्यों नहीं डैड? क्यों नहीं कहा डैड? डैड
ना ना विजय नहीं
डैड
नहीं मैं तुमको इस तरह नहीं जाने दूंगा
डैड
मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा बेटे
विजय विजय
ए आसमां बता क्या तुझको है खबर ए आसमां बता क्या तुझको है खबर ये मेरे चांद को किस की लगी नजर मुझसे कहां न जाने कोई भूल हो गई
और यहाँ खत्म होती है रवि के दादाजी की कहानी। वो रवि से कहते हैं कि अब वो खुद ये फैसला ले कि उसे किस राह पे चलना है। रवि अपना इम्तिहान देने के लिए निकल पड़ता है और इस तरह से इस फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है।